kończący. थाईलैंड की एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति जंगल में जाता है और एक अद्भुत से पक्षी को झाड़ पर देखता है और वो शिकारी होता है और वो चुपके से पीछे से जाता है और उस पक्षी को पकड़ लेता है और सोचता है इस पक्षी को अब बेचूंगा और बहुत पैसे मिलेंगे और बड़ा अद्भुत सा पक्षी लगता है ये तो। और इतना सोचते हुए जब जा ही रहा होता है तो पक्षी बोल उठता है। पक्षी कहता है मुझे छोड़ दो। वो कहता है ऐसे कैसे छोड़ दो, तुम्हारे तो बहुत बढ़िया दाम मिलेंगे मुझे। वो कहता है अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसी तीन बातें बताऊंगा, ऐसे कुछ नियम जीवन के कि अगर तुम उनका पालन करो तो बहुत मालामाल हो जाओगे। वो कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारे नियम वगैरह, तुम भाग गए तो मैं जा रहा हूं तुम्हें बेचने। वो कहता है मुझे बेचो मत, थोड़ी देर में मेरा शरीर बदलने वाला है, रंग बदल जाएगा, मैं कुरूप बन जाऊंगा। और देखते ही देखते वो पंछी का रंग बदलता है, काला जैसा हो जाता है, कौवे जैसा। वो कहता है अरे इसने तो सही कहा। और वो पक्षी कहता है कि अब तो मुझे, पहले मैं अच्छा गाता था पर अब मैं बिल्कुल नहीं गाता ठीक से, मुझे तो गाना भी नहीं आता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुझे पकाकर खाऊंगा, बेचने छोड़ दो मैं तुझे खा जाऊंगा पका के। वो कहता है मुझे, मेरी तरफ देखो तो सही एक बार, केवल हड्डियां रह गई है, मांस तो बिल्कुल भी नहीं है, तुमको क्या मजा आएगा मुझे खा के, केवल हड्डियां खाओगे। सोचने लगता है अरे ये बात तो सही है, जब पकड़ा था तब तो ठीक ठाक था, अभी तो एकदम हड्डियां दिख रही है। वो कहता है चलो मैं तुझे छोड़ता हूं, परंतु तुझे वो चीज मुझे बतानी पड़ेगी जो तुमने कही थी। वो कहता है मैं गारंटी करता हूं कि मैं वो चीज तुमको जरूर बताऊंगा, ऐसे नियम जीवन के, अगर तुम उनको फॉलो करो तो तुम मालामाल हो जाओगे। तो कहता है ठीक है चलो, पंछी को छोड़ देता है। पंछी उड़ते उड़ते शाख पर जाकर बैठता है, डाली पर, और वो कहता है आप बताओ। वो कहता है बताता हूं, मैंने वादा किया है। पहला नियम है किसी पर भी विश्वास ना करना, दूसरा जो कहे उस पर डोंट ट्रस्ट, दूसरे पर विश्वास न करना हमेशा कभी भी। दूसरा नियम है कि जो हाथ में है उसी में खुश रहना, जो तुमको मिला है उसी में खुश रहना। और तीसरा नियम है अगर जो हाथ में है वो चला गया फिर दुख नहीं करना। वो कहता है ये कौन सी तुमने तीन नई बातें बता दी, ये तो सबको पता है, ये तो संसार की बातें हैं, इससे क्या होने वाला है। वो कहता है ये इससे ही तो होने वाला है, और अभी अभी तो तुमको ये बातें इसका एहसास हुआ होगा कि तुमने ये तीनों ही नियम फॉलो नहीं किए। मैंने तुमसे कहा कि मेरा रंग बदल जाता है, मेरी आवाज नहीं है ठीक, तुम धोखे में आ गए। और वो जैसे ही झाड़ पर बैठता उसका रंग फिर ठीक हो जाता है। वो कहता है वो एक छल था मेरा, वो धोखा दिया मैंने तुमको और तुमने उसे मान लिया, मैंने जो कुछ कहा वो तुमने मान लिया। कोई एक दूसरी कहानी है जिसमें ऐसा भी कहते हैं, पहला नियम में वो पंछी उसको कहता है कि तुम मुझे मार के, तुम यदि मुझे छोड़ दो तो मैं तुमको एक हीरा दूंगा जो मेरे अंदर है, अगर मार दिया तो तुमको नहीं मिलेगा। ऐसी भी एक वर्षन है इस कहानी का। तो कहता है डोंट ट्रस्ट, तुमने विश्वास ही कर लिया मुझ पर, ये तुम्हारी पहली गलती है। दूसरी गलती, जो तुम्हारे हाथ में है वही ठीक था, उसी में तुमको संतुष्ट रहना चाहिए था, पर तुमको और भी कुछ चाहिए था। हाँ जो भी है, हड्डियां ही खा लेना था। और तीसरा, अब जब मैं उड़ गया हूं तब खुश रहो, जो चीज तुम्हारे साथ थी तब तक ठीक, जब चली गई तब भी खुश रहो। तो जीवन के ये तीन नियम है, किसी भी ऐरे गहरे पर विश्वास नहीं करना, कोई कुछ भी आके कहे, हजार बातें बनाए, अफवाहों का संसार है, अफवाहें हवाओं में है, ऐसी ढेर सारी बातें जीवन में आएगी, जरूरी नहीं है कि सब पर विश्वास करना ही है। तो अगर तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम सफल होंगे। बाबा ने भी हमको बहुत सारे नियम बताए, बहुत सारी बातें बताई है, और कहा है कि इनको यदि तुम इनका फॉलो करो, अनुगमन करो, मेरे कहे अनुसार चलो, तो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। ओबीडियंस जो है ना, आज्ञाकारिता, आज्ञाधारकता, ये बहुत बड़ा गुण है, एक ऐसा गुण कि जिसमें कई बार जिसे आज्ञा दी जा रही है उसे ये भी नहीं पता होता है कि इससे क्या मिलने वाला है, उसमें केवल एक विश्वास है कि ये मुझे किसने कहा, बस ये मुझे किसने कहा, वो विश्वास ही उसको फल देगा। जैसे महाराष्ट्र में एक संत कवि हुए थे नरहरी सोनार, उनके लिए कहा जाता है, एक किंवदंतियां है, संत जाने के बाद ही उनके बारे में कहानियां बनी है, इसके लिए कभी कोई कहानी किसको जोड़ते हैं, कभी कोई किधर जोड़ देते हैं, कितनी सत्य है पता नहीं। वो अपने, उनको एक ऐसी चमड़ी का रोग हो गया एक बार कि सब लोग उनको, उनसे दूर और घृणा करने लगे, अवॉइड करने लगे उनको, और वो दुखी हो गए और फिर अपने गुरु के पास चले गए आश्रम में। उनकी अपार श्रद्धा और भक्ति थी गुरु में, और वहीं रहने लगे और हर प्रकार की सेवा करने लगे जो कोई नहीं करता था। तो गुरु को लगा कि इस पर, इसका कितना फेथ है मुझ में, निश्चय है। उन्होंने उसको एक काम दिया, एक सूखा हुआ पौधा था, कहा कि इसको रोज पानी डालो, और वो रोज पानी डालने लगा। बाकी सब लोग हंसने लगे, तुम क्या कर रहे हो, ये सूख चुका है पौधा, इसको पानी डालने से कुछ होने वाला है क्या। पर वो पानी डालते रहा 4 साल तक उस एक ही झाड़ को, उस पौधे को, और नियमित डालते रहा। और जब ये गुरु ने देखा उसके, तो उनको लगा कि इसमें कुछ है, इसकी जो विश्वास श्रद्धा निश्चय है बहुत पक्का है। और वो झाड़ जो होता है, पौधा जो होता है, वो एक दिन 4 साल के बाद, कितना सत्य पता नहीं, पर वो पल्लवित होता है, उसमें पत्ती आने लगती है, सब कुछ होता है, और वो उससे बहुत खुश होते हैं। ऐसी एक छोटी सी कहानी बताई जाती है कि ओबीडियंस जो है, आज्ञाकारिता जो है, अब उस व्यक्ति को ये उसको भी पता है कि ये झाड़ में कभी कुछ नहीं होने वाला है, पर प्रश्न यह है कहा किसने, बताया किसने। हमको याद है एक बार कुछ समय पहले गोपड़ी में, जो हमको माता अभी मिली एक जगह, तो वो हॉस्पिटल में आई थी कभी, तो हमको तो याद ही नहीं, उसने कहा, वो सामने से आई और मिली और उसने ये बात हमको बताई, मुझे तब भी याद नहीं आया वो कौन है, क्योंकि 1-2-3 मिनट के लिए आई होगी कभी ओपीडी में, रोज 70 पेशेंट है उसमें, रोज एक कौन आता है, कब कितने आते हैं याद नहीं रहता है कई बार। तो वो कहते, कुछ मास पहले आई, तो उसने कहा, आपने कहा था ना वो एंजियोग्राफी करा लो, तो मैंने करा ली। अच्छा, अच्छी बात है। उसको कुछ एक मिनट के लिए आई होगी बस, पूरा रिपोर्ट कुछ भी नहीं था उसके पास, तो हमने खाली उसको कहा था वो करा लेना। वो गई वहां से, तो उनके साथ उसके युगल थे, वो तो नहीं थे उस समय जब ओपीडी में आई, वो यहां से चली गई। और उसको कहा, वो तो हजारों लोग बोलते रहते ये कराओ वो कराओ, क्या कराना है कुछ नहीं कराना है छोड़ो, और वो कई मास तो कुछ नहीं कराया उसने। और फिर एक बार अपने युगल को बताया कि ऐसे वहां पर वो मिले थे, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा, उसने कहा ना, उन्होंने कहा बोला तो था तो करो। उन्होंने कहा ये आदेश तुमको कहां से आया, मधुबन से ना, तो करो। और उसने की और बहुत बड़ा ब्लॉकेज निकला उसमें, और फिर एंजियोप्लास्टी कर दी। तो सामने आई और कहने लगी आपने कहा था तो हो गया, अच्छी बात है। तो कौन कह रहा है, स्वयं भगवान। यह आदेश किसका है, वो क्या कह रहा है, यह थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है इसका विश्लेषण करो तो हजार गलतियां निकलेगी शायद, अपना तर्क लगाओगे कि ये ऐसा कहता है, अच्छा हमको तो ठीक नहीं लगता। अभी एक भाई का लेटर आया 4 पेज का, उसमें इतनी सारी बातें लिख दी है, बाप रे बाप, ये ड्रामा फिक्स है तो ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, ये होगा क्या वही होगा क्या, इतना तर्क। वो पत्रकार है, पत्रकार वो पत्रकार है, तो इतनी पूरी संसार की भी पत्रकारिता की बातें, और अभी अभी ज्ञान में आए तो मन में एकदम हंगामा है। वो सब कुछ डाल दिया उसने, इधर का भी डाला उधर का भी डाला इधर का भी डाल दिया सब। और एकदम उत्कृष्ट भाषा। वो सब कुछ उसने कहीं से है, विदर्भ से। तो उत्तर सही में, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे पास कहाँ है, है क्या? बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है। हाँ, बहुत सारे प्रश्न हमको शायद पता नहीं उनके उत्तर, पर फिर भी जैसे ये बहन पूछती है, एक तरफ आप कहते हो कि ड्रामा फिक्स है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वी कैन चेंज वन नेक्स्ट सीन ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पुरुषार्थ से ड्रामा को बदल सकते हैं, विच फॉर्मूला करेक्ट है फिर? प्लीज डोंट गिव एनी डिप्लोमेटिक आंसर, आई वॉन्ट डायरेक्ट आंसर। कोई भी राजनीतिक उत्तर नहीं चाहिए मुझे। एक तरफ कह रहे हो ड्रामा फिक्स है, दूसरी तरफ कहते हो पुरुषार्थ से सब बदलता है, अब उत्तर दो। दूसरा प्रश्न, आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है, टेररिज्म करप्शन ड्रामा में, तो क्या हम ये ड्रामा अगर फिक्स है तो क्या हम एक सीन नहीं बदल सकते यहां? दो उत्तर। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या करना है, क्या है महत्वपूर्ण, क्या है किसने कहा, यह महत्वपूर्ण है। बताने वाले को नहीं बताना है तो क्यों बताए, वो अपने टाइम पर बताएगा, क्या वो उसके पास उत्तर तो होगा ना, वो ज्ञान का सागर है, वो नहीं बताना चाहता ना, वो नहीं बताना चाहता, उसको कुछ बातें बतानी ही नहीं है इस ड्रामा में, कुछ राज लास्ट तक राज ही रहेंगे, ये उसकी मर्जी है। वो नहीं बताना चाहता। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या करना है, महत्वपूर्ण क्या है, कौन कह रहा है, यही तो प्रेम है। ये नहीं पूछना ये क्यों करूं वो क्यों करूं, बस मैंने कह दिया ना करो, क्योंकि शायद तुम्हारी जो छोटी सोच है, अहमकाना सोच, इसमें तुम नहीं सोच समझ सकते हो ये इन चीजों को, क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूं वो यहां की है, तुम शायद नहीं समझ पाओगे। जैसे एक व्यक्ति आता है, एक दूर देश से व्यक्ति आता है इस देश में, और कहता है क्या तुमने वो फूल देखा है जिसकी ऐसी बढ़िया सुगंध है? वो कहता है कौन सा फूल, इस देश में वो फूल ही नहीं है, केवल इसको पता है जो यहां से आया है। वो कहता है वो फूल जिसकी ऐसी बढ़िया सी सुगंध है वो कहीं पर भी नहीं है, ऐसे यहां का व्यक्ति पूछता है कैसा है बताओ मुझे, वो कहते मैं नहीं बता सकता, वो जब तुमको ले जाऊंगा ना तो ही तभी तुम समझ पाओगे उसको, मैं कैसे डिस्क्राइब करूं उसको, कैसे वर्णन करूं उसका, कैसे तुमको समझाऊं, वो सुगंध ऐसी है कि यहां के तुम्हारे जितने फूल है उस सुगंध के आगे इन फूलों की सुगंध तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं हम नहीं मानते, जाओ यहां से, हम क्या करें। वो कह रहा है ना कि एक फूल ऐसा भी है जिसकी सुगंध इन सबसे परे है। वो कहते हैं हमको प्रूफ दो, और उस फूल को इस दुनिया में लाया नहीं जा सकता। पर हां यहां के लोग वहां जा सकते हैं, और वो कहता है मैं तुमको ले जाऊंगा, वो कहते हैं नहीं हमको नहीं जाने, हमको यहीं लाके दो तो ही हम मानेंगे। फूल है, चित्र से सुगंध थोड़ी आएगी, चाहे व्हाट्सएप से भेजो या वीडियो भेजो, सुगंध थोड़ी आएगी। तो भगवान भी हमको आकर कहता है ऐसी यहां की कुछ स्थिति है, मैं तुमको यहां बता रहा हूं, ये जो सुख है जिसमें तुम डूबे थे इंद्रिय, इन इंद्रिय सुखों से परे एक दूसरा सुख है अतिंद्रिय, पर वो तब मिलेगा जब तुम वो कहोगे जो मैं कहूंगा। वो कहते तुम तो कुछ भी कहोगे, हम क्यों माने। अरे मैं कह रहा हूं ना, मुझे पता है, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये गारंटी देता हूं, ये मेरी गारंटी है, बोले मानो तो तुम। वो कहते नहीं पहले हमको फूल दिखाओ, तो उसके बाद साक्षात्कार कराओ, ऐसी भी कोई दुनिया सतयुग वित्युग है या सत सूक्ष्म वतन या परम धाम है या बस मनगढ़ंत कहानी है, अनुभव तो कुछ दिखता तो कुछ भी नहीं, योग में बैठते आज तक दिखा नहीं परम धाम। हाँ कहीं दुनिया जो कहती है वही राइट तो नहीं। तो इस मुरली में, ये मुरली है 15 नवंबर 2003 की, ये बहुत पावरफुल मुरली है पवित्रता की। ये वही मुरली है जो सभी सेंटरों पर बाबा का धर्मराज का रूप लगा है, और वो पवित्रता अर्थात सफेद कागज पर काला दाग अपवित्रता, चाहे सेवाधारी हो चाहे कोई भी हो, टीचर हो, सरेंडर वाला हो, मधुबन निवासी हो, गृहस्थ हो, सबके लिए एक ही नियम है संपूर्ण पवित्रता। ब्रह्मा ने इतनी गालियां खाई पवित्रता के लिए, और तो बाप अभी फिर बाबा, ये बाबा ऑफिशियल वार्निंग दे रहे हैं, फिर बाबा का धर्मराज का रूप होगा। ये मत कहना हमसे तो थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है, सुन लो कान खोल के सुनो, दोनों कान खोल के सुनो। ये सभी सेंटरों पर, कई सेंटरों पर ये चित्र लगा हुआ है, बाबा का धर्मराज का रूप, नीचे 15 नवंबर 2003 पवित्रता अर्थात से चालू होता है। तो ये मुरली में बाबा कह रहे हैं अच्छा मन को ऑर्डर से चलाओ, सेकंड में जहां चाहो वहां मन लग जाए, टिक जाए, ऐसे यह एक्सरसाइज करो, फिर ड्रिल कराई। अच्छा तो मन को ऑर्डर से चलाओ, एक सेकंड में जहां मन लगाओ, लगाना चाहो वहां लग जाओ। तो आज सारे दिन भर कुछ अभ्यास करने, अभ्यास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनती सारे दिन भर गिनती करती रहनी है। पहला एक, एक की याद में स्थित हो जाना तुरंत, एक सेकंड में, बीच में भी कहीं पर भी अपने आप को स्टेबल कर देना। नंबर कहना 1, और 1 कहते ही 1 की याद में। आज का है तुम्हें अगर अनलिमिटेड स्कॉलरशिप चाहिए, देहत की स्कॉलरशिप, तो एक बाप को यादना पड़ेगा बस, और कोई नहीं। 1 अर्थात सीधा 1 में खो जाना, 1 में डूब जाना। वो भी ठीक है, 1 में खो जाना, वैराग के 1 में, प्रभु प्रेम के 1 में, एक में खो जाना, नन बट 1, एक की याद, एक की स्मृति, एक से प्राप्ति, एक से सारे रिश्ते, एक की अनुभूति, एक की याद में मगन, एक से सर्व संबंध, एक से एक के प्रति समर्पण भाव, एक से सुनना, एक के साथ रहना, एक से बात करना, एक का संदेश देना, एक के लगन में मगन होना, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप ही संसार, एक वो दूसरा मैं और तीसरा ना कोई। तीसरा आए तो संडे वाली मुरली की तीसरी आंख बंद, और जब तीसरी आंख बंद हो जाएगी तो गिफ्ट चोरी, जब तीसरी आंख बंद हो जाएगी तो दूरबीन में कचरा, जब तीसरी आंख बंद हो जाएगी तो अनुभव की आंख खलात, जब तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा तब शक्तिशाली यंत्र खराब और कमजोरियां नजर आएगी, और जब तीसरी आंख बंद हो जाएगी तो टीवी में खरखर कुछ भी नहीं दिखेगा। पांच उदाहरण, संडे की मुरली, तीसरा नेत्र, कुछ भी नहीं दिखाई देगा उसमें। एक कोई आ गया बीच में कि गया, बड़ा सेंसिटिव टीवी है ये, एंटीना भी इधर है, थोड़ा सा इधर कर लिया कुछ भी नहीं दिख रहा है, या दिख रहा है तो आवाज नहीं है, पिक्चर नहीं, ऐसे हो रहा है। हाँ, माया की बारिश हो गई तो कुछ भी नहीं दिखता है फिर, फागी। तो पहला वन, टू, टू शब्द बोलना है, एक बाबा एक मम्मा, इन दोनों के जीवन चरित्र को याद करना तुरंत। टू, ब्रह्मा ने क्या किया था, मम्मा ने क्या किया था, ये जो मैं अब कर रहा हूं क्या मम्मा या ब्रह्मा ने भी ऐसा किया होगा उसी परिस्थिति में, उसी समय, उसी संदर्भ में। अभी इतना क्रोध आ रहा है किससे कि इसको जाके कुछ बोल दूं, स्टॉप। अगर ब्रह्मा पर लांछन लगे, कलंक लगे, दाग लगे, तोहमत लगी, तो क्या उसने भी वही किया, या उसने वेट किया थोड़ा, देखते हैं, कुछ नहीं करना है। उर्दू में कहते हैं, बिना सदाकत के किसी पर भी तोहमत नहीं लगाना। सदाकत अर्थात सत्य जाने, ट्रुथ, विरासिटी। बिना सत्य जाने, केवल देख लिया दूसरे कुछ ऐसा हो रहा है, वो सत्य नहीं हो सकता है, आंखें धोखा देती है। जो दिख रहा है, ये सामने सामने दिख रहा है, वो भी धोखा हो सकता है, सत्य कुछ और ही है। सुना हुआ तो हो ही सकता है, देखा हुआ भी धोखा हो सकता है, जो सरासर दिख रहा है सामने वो भी धोखा हो सकता है। दोनों के चरित्र को, जीवन को, जीवन कहानी को याद करना। उस दिन जो संडे तीसरा नेत्र कहा था टीवी, उस टीवी में इन दोनों के जीवन कहानी को भी देखना है, या बड़ी वरिष्ठ दादिया जो है उनके जीवन चरित्र को भी देख सकते हैं इस टीवी में। टीवी में देखेंगे तो हमको थोड़ी सी प्रेरणा आएगी कि ऐसा हमको भी करना है जैसा इन्होंने किया। तीसरा, तीन लोक, एक सेकंड में, या एक सेकंड में क्या करना है, तीनों लोकों की यात्रा कर लेनी लिफ्ट से। तीन लोक तीन काल, तीन लोक और तीन काल, थ्री अर्थात तीन लोक तीन काल, वैसे तो बहुत सारा हो सकता है पर एक सेकंड में करना है आज के दिन के लिए। तीन लोकों में चले जाना, अभी अभी यहां, अभी अभी वहां, और अभी अभी एकदम ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। लिफ्ट, लिफ्ट चाहिए दिव्य बुद्धि की, लिफ्ट बीच में अटक ना जाए, नहीं तो ऊपर नहीं नीचे नहीं, सूक्ष्म वतन भी नहीं धरती नहीं, उसके बीच में ही अटक गए और परेशान हो रहे। शान की बजाय दिव्य बुद्धि की लिफ्ट का स्विच ऑन करो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वापस नीचे, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर ऊपर है, उल्टा है। तीन लोगों की सैर कर लेना दिन भर। चौथा, चार सब्जेक्ट, फोर सब्जेक्ट, आज की मुरली में क्या वहां वाक्य थे तुरंत याद करने की कोशिश करना। योग की कौन सी पॉइंट थी तुरंत याद करने की कोशिश, धारणा के लिए क्या कहा और सेवा के लिए क्या कहा था, तुरंत मन को घुमाना है चार में, ये चारों सब्जेक्ट। फिर पांच, पांच स्वरूपों का अभ्यास, पांच स्वरूपों का अभ्यास, परमधाम में मैं आत्मा, सतयुग में, द्वापर में, संगम पर और फरिश्ता, इन नंबरों, चार धाम भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं वैसे तो, हाँ आज के लिए बता रहे, नहीं तो एक एक पे सौ सौ निकाल सकते हैं, इतना विशाल ज्ञान है। ये ज्ञान मतलब चटपट चाट के जैसा है। इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। फिर चार सब्जेक्ट को याद करना, अर्थात मुरली को याद करना। मुरली में चार सब्जेक्ट की कौन सी पॉइंट्स थी आज के दिन? पांच, बीच बीच में पांच स्वरूपों का, जैसे टाइम मिला, कोई नहीं है आसपास, दो मिनट तीन मिनट फ्री है, तुरंत अभ्यास चालू कर देना, मन को घुमाना चालू कर देना, उधर 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 उधर, ऐसे ऐसे, या उल्टा भी घुमा सकते हैं, अभी फरिश्ता, फिर ब्राह्मण, फिर पूज्य देवता, और फिर परमधाम, फिर नीचे घुमाना है। उसके बाद में छह ड्रामा के छह राज, छह ड्रामा के छह राज, बहुत सारे राज है, छह लेंगे। ये ड्रामा फिक्स्ड है। इस ड्रामा में, या फिर इससे अच्छा, ये ड्रामा सत्य है। जो कुछ हो रहा है वो राइट हो रहा है। इस ड्रामा में कुछ भी कहीं गलत नहीं हो रहा है, शायद हम नहीं देख पा रहे इसलिए गलत लगता है। दूसरा, ये ड्रामा रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो हो रहा है पहले भी हुआ था, अब भी हुआ, क्यों आश्चर्य करूं कि ये व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, वो वैसा क्यों करता है? क्योंकि इतनी बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, अब तक बहुत अच्छा पुरुषार्थ था, किसी का एकदम ही ज्ञान छोड़ दिया, दुख होता है। सेंटर की बहन को कितना दर्द होता होगा, कोई अनन्य उसका विद्यार्थी ज्ञान ही छोड़ दे, कोशिश कर लिया, उसको टोली भेजी, सब कुछ किया, फिर भी कहता है अब नहीं आऊंगा सेंटर पर। मुरलिया भेजी, क्या किया बताता नहीं, और यह भी नहीं बताता क्यों नहीं आ रहा है। एक है बता के जाना कि मैं आज से नहीं आऊंगा, एक है बिना बताए निकल जाना, युक्ति, कोई कोई युक्ति से भी नहीं, डायरेक्ट। तो ये ड्रामा रिपीट हो रहा है। उसके बाद में तीसरा, ये ड्रामा कल्याणकारी है। इस ड्रामा में हर सीन में कल्याण छिपा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है पर सीन में कल्याण है जरूर, शायद बाद में दिखाई देगा। अभी तो बहुत दर्द हो रहा है पर वक्त हर दर्द का मरहम है, हर घाव की पट्टी है। वक्त, टाइम इज द हीलर। जो घाव कोई भी नहीं ठीक कर सकता, कोई डॉक्टर, कोई पट्टी, कोई ड्रेसिंग, कोई बैंडेज, कोई दवाई, वो एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर टाइम। ये जो डॉक्टर है ना, चिकित्सक, हर घाव को ठीक कर देता है, पर इसको टाइम, बस धैर्य चाहिए, नहीं समय को, समय नहीं चाहिए, समय, समय ही तो डॉक्टर है, उसमें धैर्य चाहिए। हाँ, डिस्पेंसरी में। तो ये ड्रामा कल्याणकारी है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है कल्याण, पर एक दिन दिखाई देगा। और यहां पर फिर से वही बात, कोई कहे मुझे तो कुछ भी कल्याण नहीं दिखा रहा है, अरे माना कुछ भी नहीं दिख रहा है कल्याण, सब नुकसान ही नुकसान है। प्रश्न क्या है, क्या कहा है वो नहीं, किसने कहा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कहने वाला है वो इस ड्रामा से बाहर है, वो वहां से आया है, उसको पता है वो फूल, तुमको पता ही नहीं ना वो फूल, वो छोटा वो मेंढक समुद्र से आया है और कुएं के मेंढक से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, वो कहता है मैं खेल रहा हूं, वो कहता है उधर चलोगे समुद्र में, वो कहता है नहीं यही तो समुद्र है, वो कहता है ये, पूछता है कितना बड़ा है तुम्हारा समुद्र, वो कहता है समुद्र बहुत बड़ा, वो कहता है छोटा मेंढक कहता है, कूद के दिखाता है एक छलांग, इतना बड़ा, अरे नहीं नहीं इतना, ये तो कुछ भी नहीं, बड़ी छलांग लगाता है इतना, वो कहता है नहीं तुम सोच ही नहीं सकते, और बड़ी छलांग लगाता है कुएं के एक तरफ से एक तरफ, इतना बड़ा, वो कहता है नहीं इससे बहुत बड़ा, कहता है जाओ यही समुद्र है, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे समंदर में, यही समंदर है मेरा, झूठ बोलते हो तुम। कहा किसने है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, किस ऑथोरिटी से वो कह रहा है, क्या उसको पता नहीं भ्रष्टाचार अत्याचार, ये जो कुछ एक व्यक्ति है उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, हमेशा से कलंक लगाए गए हैं, बचपन से लेके आज तक उसको सताया गया है, जिस घर में वो गया गई उसको वहां से निकाला गया, कुछ कुछ हुआ, अनाथ पैदा हुई, कोई नहीं था, जिस घर ने पाला पोसा उसी ने एक दिन निकाल दिया, वहां से कहीं और गई उसने वहां से निकाल दिया, वहां से कहीं और गई वहां से निकाल दिया। और हम कहते थे कल्याण तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब गलत ही गलत हो रहे हैं। यहां तो एक बेगुनाह है उसको ही सजा सुनाई गई है 20 साल की, जेल में सड़ रहा है, घुट रहा है अंदर ही अंदर कि ये किस गुनाह की सजा है। पर इसमें भी कल्याण है क्योंकि कह कौन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये ड्रामा न्यायपूर्ण है, न्यायकारी है ड्रामा, इसमें किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, जो जिसको मिलना है वही मिल रहा है, न कम न ज्यादा, नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड, हरेक को वही मिल रहा है। ये ड्रामा न्यायकारी है। उसके बाद में ये ड्रामा विविधतापूर्ण है, बहुत वैरायटी है इस ड्रामा में, एक ही प्रकार का ड्रामा नहीं है, बहुत सारे लेयर्स है, लेयर आफ्टर लेयर्स। बाय प्लॉट्स कितने हैं हमारे अपने अपने अकेले जीवन को देखो तो इतनी सिंपल स्टोरी नहीं है हमारी जितनी हम सुनाते हैं कि मैं ऐसा था फिर ज्ञान में आया फिर बाबा का हाथ पकड़ लिया फिर मधुबन आ गया अभी 15-20 साल से मधुबन में हूं सब ठीक चल रहा है, इतना सिंपल है। ऐसा है क्या? कितने उसमें लेयर्स है और कितने बाय प्लॉट्स है, कितनी हजारों बातें, एक ही दिन में तो 10-100 बातें होती। हाँ उसे थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो फिर अभी ठीक चल रहा है, हो गया, ऐसा होता है क्या? बहुत बाय प्लॉट्स है। उसके बाद में ये ड्रामा भगवान को पसंद है तो तुमको भी पसंद आना चाहिए। सारे सीन ऐसा नहीं कि कुछ सीन, 10 सीन मुझे पसंद है पर ये जो 2 जो है ना जिसमें मुझे सबके सामने उसने अपमानित किया था इसको बाबा हटाओ, नेक्स्ट जो ड्रामा होगा ना एक्सेप्टेड, बाकी जहां मेरी तारीफ हो रही है लोग कह रहे वाह 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 ये तुम बहुत योगी हो, तुम बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है, ये सारे सीन रख देना, पर जहां पर लोगों ने कहा कुछ गड़बड़ बोला मेरे बारे में, ग्लानी कर दी, वो सीन को उतना हटा दो बस, मेरी इतनी सी तो इल्तिजा है, कुछ मैं ज्यादा मांग भी नहीं रहा हूं तुझसे बाबा, जिस सीन में मुझे दुख हुआ है उसको हटा दो बस, और इससे किसी को क्या नुकसान हो रहा है, एक सीन कट कर दो ना, सेंसर बोर्ड तो कट करता है ना बीच बीच में, अगर कुछ पब्लिक ये हो जाए तो कहता है ये 2-3 सीन हटा दो इसमें से, तो हमारे भी हटा दो 2-3 ये दुख वाले, बाकी हमको ड्रामा जैसा तुम कह रहे हो पसंद है, मुझे भी पसंद है। 6 उसके बाद में 7 आत्मा के 7 गुण, इसमें स्थित हो जाना है, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, सुख शांति प्रेम अनंत शक्ति, इस स्वरूपों में स्थित होना है, खाली ज्ञान होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे तो पता है 7 स्वरूप क्या है, हम तो कोर्स में रोज बताते हैं, अरे बताते हैं पर अभ्यास कितना है खुद का। हमको तो याद है पर अभ्यास किया क्या उसका, दिन भर नहीं किया है ना, वो करना है। उसके बाद में 8 शक्तियां, अष्ट शक्तियां, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इनका सबसे ज्यादा काम कहां पड़ता है, दिनचर्या में, सेवा में, दिनचर्या में, हर जगह परखना है, हर जगह निर्णय लेना है, हर जगह सहन करना है, समाना है और सामना करना है परिस्थितियों का, संकीर्ण करना है अपने आप को, विस्तार को, और पैक करते हैं फटाफट, कितना काम है शक्तियों का, तो बहुत ज्यादा काम है, सारी शक्तियों का आह्वान करके ही निकलना है सेवा पर, नहीं तो झगड़े। उसके बाद में 9 खजाने ज्ञान गुण शक्तियां संकल्प समय खुशी दुआएं श्रेष्ठ कर्म पवित्रता, 9 खजाने। खजाने अनगिनत है, जैसे संतुष्टता भी खजाना है, पर मेन खजानों में वो नहीं आता है, ये 9 आते हैं, तो 9 खजानों का चिंतन, ये खजाना कोई लूट न ले। दस में क्या लगा हो गया आप बताओ, दस माने बस, दस अर्थात, दस अर्थात दसो दिशाएं नहीं, याद क्या करना है दिन भर, टेन नंबर में नहीं, दस दस में क्या याद करेंगे दस में क्या याद करेंगे, दसों इंद्रियों पर शासन लिया जा सकता है साक्षी ने, टेन बातें चाहिए, टेन थिंग्स, टेन रूल्स, नियम, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम बहुत है परंतु दस नियम ले लेंगे उससे जो इसमें हम एक्यूरेट रहे। पहला अमृत वेला, दूसरा ब्रह्मचर्य वो टूटे ना, खंडित ना हो, तीसरा मुरली चिंतन, मुरली सुनना पढ़ना नहीं, क्या करना है मुरली का चिंतन, क्योंकि पढ़ी तो सुनी भी चिंतन नहीं किया, वो नियम है, और जब तक चिंतन नहीं करेंगे आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी, ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है। चौथा भोजन, किस तरह से लिया, कैसे भोजन खाया, याद में खाया, स्वाद के लिए खाया, अधिक खाया, ज्यादा खा लिया, टेस्टी बहुत ज्यादा था, कम खाया, क्या किया भोजन का। भोजन के तीन हिस्से शरीर में होते हैं, सबसे निचला हिस्सा जाकर मल, बीच का हिस्सा जाकर शरीर, और सबसे सूक्ष्म हिस्सा जो है भोजन का जाके सीधा मन बनता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। इसके लिए जो भोजन गया वो सीधा जाके मन बन रहा है, उसमें जितनी उत्तेजनाएं हैं वो सारी उत्तेजनाएं मन की उत्तेजनाओं में रूपांतरित हो रही है, उसमें जितना स्वाद लोलुपता है वो सारी लोलुपता जाकर मन बन रही है, उसमें जितनी आसक्ति से खाया जा रहा है वो सारी आसक्ति मन की आसक्ति में रूपांतरित हो रही है। उसके बाद में ट्रैफिक कंट्रोल, सारे दिन भर कितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल किया और कैसे किया, 1 2 3 4 5। उसके बाद में कर्मयोग, रहा या बस कर्म ही करते रहे, सोशल सर्विस, खाली समाज सेवा, कई बार सेवा जो है समाज सेवा बन जाती है, उसमें याद वगैरह नहीं है, खाली सेवा कर रहे, नेमिनाथ स्टेरियोटाइप, बस काम दिया है रोज का है, गए डिपार्टमेंट में चालू कर दिया और आ गए, प्रैक्टिस बहुत हो गई है, अपने आप बुद्धि किधर भी भटकती रहे सेवा चालू रहती है, याद की थोड़ी ना जरूरत होती है भोजन बनाते समय, बाबा ने कहा है तुम भोजन टेस्टी बनाते हो इसका अर्थ ये नहीं तुम याद में बना रहे हो, तुमको प्रैक्टिस हो गई है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, वो ट्रैक प्रैक्टिस हो गई है, जैसे सर्जन को प्रैक्टिस हो जाती है ऑपरेट करने की, गीत सुनते रहते भी ऑपरेट करते हैं आराम से, कुछ नहीं होता है, गाड़ी चलाने की इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि इधर बात चालू है मल्टीटास्किंग और गाड़ी भी चालू है, प्रैक्टिस है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो दूसरी बात है। कर्मयोग, उसके बाद में संबंध या दिनचर्या की चीज है, संबंध कैसे रहे सारे दिन पर, डिटैचमेंट रहा संबंधों में, क्या आसक्ति रही या उसके अतिरिक्त घृणा, दो व्यक्तियों में नफरत। उसके बाद में नुमाशाम का योग, किया नहीं किया, किया तो कितना किया और कैसे किया और कितना मिस किया, तैयारी कैसे, कब से कितने बजे से चालू की उस योग की, क्या जितना महत्व अमृत वेले को दिया उतना ही नुमाशाम को दिया, या नुमाशाम नाकी पे घूमने में जा रहा है, या किचन में बैठ के कुछ नई नई चीजें बनाने में जा रहा है, या कोई टीवी के समाचार सुनने में जा रहा है, या मोबाइल पर कुछ देखने में जा रहा है, या किसी से चर्चा करने में जा रहा है, सेवा उस समय है नहीं फिर भी कर, योग नहीं कर रहे कुछ और कर रहे, जिसको सेवा है उसकी बात ही और, उसके लिए माफ, वो तो चलो सेवा करते करते याद करे, पर जिसको कुछ भी नहीं है वो कर सकता है, फिर भी किसी आकर्षण ने पकड़ रखा है, खींच के रखा है, वो छोड़ नहीं पा रहा है उसको। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा दुख है परवश हो जाना। कोई एक चीज का ऐसे परवश हो गए कि अब छूट नहीं पा रहे उस आदत से, एडिक्शन से, व्यक्ति के प्रभाव से, टीवी से, इंटरनेट से, मोबाइल से, मूवी से। उसके बाद में ज्ञान चर्चा। रात को सोने से पहले क्या होनी चाहिए? हमारे मुख से ज्ञान निकलना चाहिए एक बार तो भी 24 घंटे में। ऐसा ना हो कि आज सारे दिन भर हमने किसी को कुछ भी ज्ञान की बात नहीं सुनाई, और जरूरी नहीं कि उसके लिए माइक की आवश्यकता है। ज्ञान की चर्चा कहीं पर भी की जा सकती है, किसी से भी की जा सकती है। ज्ञान की चर्चा खुद से कोई भी नहीं मिला तो अपना आईना के सामने बैठो और उसको सुनाओ। वो भी नहीं है तो शिव बाबा को ही सुनाओ। तुमको याद है कि नहीं आज क्या बोला तुमने? कि बस सुना के चले गए, मैं तुमको याद दिलाता हूं। तुमने आज ये बताया, बच्चा वो बता रही थी ना बहन, स्टूडेंट्स को बता के उसको ही सिखाया कि तुमने आज ऐसे ऐसा किया। अच्छा है ना, उसको भी रिवाइज हो जाएगा ज्ञान। लास्ट है चार्ट। ये 10 नियम है सोने से पहले, मौखिक या लिखित। जरूरी नहीं है लिख कर ही, तो सुना दो ये आज ऐसा रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, हल्का हो जाओ फिर सो जाओ। ये 10 नियम। तो 10 बातें बताई।
55 बातें हो गई।
अच्छा। गिनती नहीं करो, गिनती छोड़ दो। गिनती से लगता है अच्छा इतनी सारी हो गई। और जिससे प्यार है उससे गिनती कैसे? इसके पहले भी बताए थे, एक साधु माला जपते हुए आता है गांव में, और देखता है वो ग्वालिन अपना प्रेमी को दूध दे रही है वो मटके से, और वो उसको देख रही है, वो उसको देख रहा है, दोनों देख रहा है, वो दूध गिर रहा है, वो गिन भी नहीं रही है। वो कहते अरे अरे क्या कर रही हो, गिनो तो सही कितने का है, तुम बेचने वाली हो ना, तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। वो तो ग्राहक है, वो लेने आया है। वो कहती है जिससे प्यार है उसके गिनती कैसी? साधु माला को देखता है, मैं क्या कर रहा हूं इतने सालों से। जिससे प्यार है उससे गिनती, माला फेंक देता है अपनी। ये तो बिजनेस हो गया, बाबा को इतने घंटे में नहीं याद किया। वो दूसरी बात, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बस 8 घंटा याद कर लिया और हो गया काम। ये भी है एक मुरली इसके ऊपर। मतलब बाप को तुम इसमें तोल रहे हो कि आज मैंने 8 घंटा याद किया, 4 घंटे हद को ला लिया था, हद में ला लिया तुमने बेहद के बाप को। तो वन अर्थात एक बाप को याद करना, टू अर्थात ब्रह्मा और मम्मा, थ्री अर्थात 3 लोक, 4 अर्थात 4 सब्जेक्ट आज की मुरली से, 5 अर्थात 5 स्वरूप, 6 अर्थात ड्रामा के 6 राज, 7 अर्थात आत्मा के 7 गुण स्वरूप, 8 अर्थात 8 शक्तियां, 9 अर्थात 9 खजाने, 10 अर्थात 10 नियम इस ब्राह्मण जीवन के। नियम बहुत सारे हैं, 10 खींचे हैं उसमें से ये। तो अगर इन नियमों के विरुद्ध अगर मन में कोई ख्याल है तो उसको नोच के बाहर निकाल दो और फेंक दो। इसके अतिरिक्त अगर कुछ ख्याल है तो आज की ड्रिल फिर से एक बार बैठेंगे अलर्ट होके, 2 मिनट की ड्रिल है वो करनी है सबको, 15 नवंबर 2003 की है। मन को ऑर्डर से चलाओ, जो स्थिति में स्थित हो जाना चाहे स्थित हो जाए। ओम शांति।
मारो।